कमरा अब पूरी तरह भारी हो चुका था। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी जैसे थरथरा उठी थीं। जब विश्वनाथ ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और तेज कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ा, वो अब इंतजार नहीं कर पा रहा था। हर उल्टी की आवाज उसे और उकसा रही थी, हर बूंद की टपकती आवाज जैसे उसकी नसों में आग घोल रही थी। श्यामली, उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि दरवाजे का आधा खुला पल्ला कांप उठा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस धीमी सी सिसकती सांसें। विश्वनाथ ने दरवाजा पूरा धक्का देकर खोला। भीतर का नजारा देखकर पल भर के लिए वो ठिठक गया। श्यामली फर्श पर घुटनों के बल झुकी हुई थी, बाल बिखरे, आंखें आधी बंद, होंठों पर पानी की हल्की झिलमिलाहट, चेहरे पर कमजोरी और गालों पर पसीने की परतें। उसका चेहरा इतना मासूम था कि जैसे कोई बच्ची दर्द में रो पड़ी हो, पर विश्वनाथ की आंखों में उस वक्त सिर्फ शक था। वो आगे बढ़ा और झटके से उसका कंधा पकड़ लिया। श्यामली, जवाब दो मुझे। वो घबरा गई, सिर उठाने की कोशिश की, पर उसकी सांसें टूटी टूटी थीं, आवाज फंसी हुई।
मैं विश्वनाथ जी, मैं
क्या? विश्वनाथ चीखा। घर में सब कह रहे हैं तुम माँ बनने वाली हो, कौन है वो, बोलो। श्यामली की आंखें फैल गईं।
क्या क्या कह रहे हैं आप?
वही जो सब बोल रहे हैं। विश्वनाथ ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, इतना पास कि उसकी सांसें श्यामली के चेहरे से टकराने लगी। तुम माँ कैसे बन सकती हो? हाँ, हम कभी करीब नहीं आए तो फिर ये कैसे मुमकिन है? उसका स्वारक तांपता नहीं था, वो पूरी तरह उबल चुका था। कहीं ये किसी और का नहीं? श्यामली की आंखों में जैसे बिजली सी कौंध गई। वो कांपती हुई बोली,
सुनिए ऐसा मत कहिए।
पर उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने गले पर हाथ रख दिया हो। विश्वनाथ का चेहरा और कठोर हो गया। मैंने तुम्हें मासूम समझा था, तुम तो बदचलन निकली। ये शब्द हवा को चीर गए। श्यामली का शरीर एकदम सख्त हो गया, चेहरे पर सन्नाटा उतर आया। वो अब भी उसकी पकड़ में थी और विश्वनाथ की उंगलियां उसके नाजुक कंधों में धंसती जा रही थीं। धीरे धीरे श्यामली ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा दर्द था जो बोल भी नहीं पा रहा था।
आपको,
उसने बहुत मुश्किल से कहा, मुझ पर इतना शक? विश्वनाथ ने जवाब नहीं दिया। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था, पर उसका चेहरा अब भी ठंडा और कठोर था। श्यामली ने अपनी नजर झुका ली, धीरे से बोली,
मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया, ना झूठ कहा। आप चाहें तो मुझे सजा दे दीजिए, पर मेरे चरित्र पर उंगली मत उठाइए।
उसके होंठ कांप रहे थे, चेहरे पर पीला पड़ता रंग और आंखों के नीचे गहरे साए। वो वाकई बहुत कमजोर थी। वो बोलते बोलते फिर दीवार का सहारा लेकर खड़ी रहने की कोशिश करने लगी, पर उसकी देह साथ नहीं दे रही थी। विश्वनाथ की पकड़ ढीली हुई, पर गुस्सा अब भी उसके चेहरे पर था। वो एक कदम पीछे हट गया, मगर उसकी निगाहें अब भी उस पर थीं, सवालों से भरी, संदेह से सुलगती हुई। श्यामली ने दोनों हाथों से अपने कंधे ढके, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो, धीरे से बोली,
मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया विश्वनाथ जी, जिससे आपको शर्म आए।
उसकी आवाज बहुत हल्की थी, पर उसमें जो सच्चाई थी वो हर दीवार से टकरा कर गूंज उठी। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई, पर जो भी है मैंने नहीं किया। उसकी आंखें अब झुक चुकी थीं, बाल चेहरे पर गिर गए थे और होंठों से बस टूटी हुई सांसें निकल रही थीं। विश्वनाथ बस खड़ा रहा, कठोर पर अंदर से टूटता हुआ। कुछ पल बाद उसने चेहरा फेर लिया, जैसे उसे खुद से ही नफरत होने लगी हो। बाहर से दिया जलने की हल्की सी रोशनी कमरे में आई, जो अब उनके बीच की गहराती दूरी को और साफ दिखा रही थी। श्यामली वहीं फर्श पर बैठी थी, कमजोर, मासूम और अजनबी सी लगती हुई, जैसे किसी ने उसके भीतर से रोशनी छीन ली हो। और विश्वनाथ रुक गया, कंधे झुके हुए, पर चेहरा अब भी बर्फ जैसा ठंडा। कमरे में बस दो आवाजें रह गईं, श्यामली की टूटी सांसों की और भीतर उठते उस तूफान की, जो अब इस हवेली की नींव तक हिला देने वाला था। शावर का हैंडल शायद श्यामली की कोहनी से छू गया था। अचानक पानी का तेज झरना ऊपर से गिर पड़ा। ठंडे पानी की बूंदें दीवारों से टकराई, फर्श पर छींटे उड़े और उसी पल दोनों के बीच की खामोशी टूट गई। श्यामली ने घबराकर पीछे देखा। विश्वनाथ बस दो कदम दूर था, भीगा हुआ, सख्त चेहरा, पर आंखों में एक अजीब सी गहराई। उसका गुस्सा अब भी जिंदा था, पर उस गुस्से के भीतर कुछ और भी था, एक खिंचाव जिसे वो खुद से भी छुपा नहीं पा रहा था। श्यामली ने कांपते हाथों से शावर बंद करने की कोशिश की, पर नल फिसल गया, पानी और तेज बहने लगा। उसकी साड़ी गीली हो चुकी थी, बाल चेहरे से चिपक गए थे और उसके सांसों की रफ्तार अब पानी से भी तेज थी। विश्वनाथ वहीं खड़ा रहा, न जाने क्यों, लेकिन उसकी नजरें उस पर से हट नहीं रही थीं। वो देख रहा था कैसे हर बूंद उसके चेहरे से होकर गिरती है, कैसे उसके कांधे हौले हौले कांप रहे हैं और कैसे वो फिर भी अपनी इज्जत संभालने की कोशिश कर रही है। श्यामली ने सिर झुकाया, आवाज बहुत धीमी थी। जाइए प्लीज। पर विश्वनाथ नहीं गया, बस एक कदम और बढ़ा। पानी अब उनके बीच गिर रहा था, जैसे कोई दीवार पर पारदर्शी। वो दोनों उस पारदर्शी पर्दे के आर पार एक दूसरे को देख रहे थे। नफरत की आग और किसी अजीब मोह की खींच दोनों एक साथ चल रही थी। विश्वनाथ ने हाथ बढ़ाया, न जाने रोकने को या समझने को, पर उस हाथ का इशारा ही काफी था कि श्यामली पीछे हटी, पीठ दीवार से जा लगी। पानी की धार अब दोनों के बीच बह रही थी और हवेली की सारी आवाजें जैसे गायब हो चुकी थीं। उसके होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। विश्वनाथ की आंखों में एक सवाल था, क्यों? वो बस यही पूछना चाहता था पर बोल नहीं पाया। पल भर को उसने अपनी उंगलियां उसके गीले बालों से छूती हुई निकाली, जैसे किसी सच को पकड़ लेना चाहता हो। श्यामली कांप उठी। वो डर भी रही थी और कुछ महसूस भी कर रही थी, जिसे वो खुद से भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और वही पल जैसे समय में ठहर गया। विश्वनाथ ने मुंह फेर लिया, पर अगले ही पल फिर देखा। श्यामली अब दीवार से टिककर खड़ी थी, सांसें टूटी हुई पर चेहरे पर अब भी वही मासूमियत। पानी के साथ उसकी बिंदी बहकर गाल पर आ गिरी थी। विश्वनाथ का दिल जैसे थम गया। वो कुछ कहना चाहता था पर गले में शब्द फंस गए। दोनों की चुप्पी अब बेकाबू हो चुकी थी, इतनी गहरी कि उसमें सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। श्यामली ने धीरे से कहा, आप ऐसा क्यों देख रहे हैं मुझे? विश्वनाथ के होठों से बस इतना निकला, मुझे नहीं पता। उसके अंदर उबलती नफरत अचानक अजीब सी बेचैनी में बदल रही थी। वो अब खुद से ही लड़ रहा था। उसे याद आ रहा था कुछ ही देर पहले वही इंसान था जो उस पर शक कर रहा था, और अब वही उसके सामने खड़ा, उसके हर सांस के साथ कांप रहा था। श्यामली ने पल भर को उसकी ओर देखा। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये वही आदमी है जो कुछ देर पहले उसे अपमानित कर रहा था, या वही पति जिसके भीतर कोई अधूरा स्नेह अब भी बाकी था? विश्वनाथ ने एक गहरी सांस ली, चेहरे से पानी पोंछा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। श्यामली बस देखती रही। वो जवाब नहीं दे सकी, शायद दे भी नहीं सकती थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और फिर रुक गया। बस उसकी नजरें श्यामली के चेहरे पर ठहर गईं। पानी अब धीरे धीरे कम बह रहा था, पर उनकी सांसें अभी उतनी ही तेज थीं। श्यामली की उंगलियां कांप रही थीं। उसने नल को बंद करने की कोशिश की, पर तभी विश्वनाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। पल भर को दोनों के बीच एक झटका सा दौड़ा। श्यामली ने नजर उठाई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? विश्वनाथ चुप रहा। वो बस उसके चेहरे को देखता रहा, जहां अब मासूमियत और गलतफहमी दोनों एक साथ थे। धीरे से उसने उसका हाथ छोड़ दिया।
पानी अब पूरी तरह बंद हो चुका था, पर कमरे में अब भी वही नमी थी जिसमें दोनों की सांसें, शक और एक अनकही खींच बसी हुई थी। श्यामली ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर फिसल गया। विश्वनाथ ने झट से उसे थाम लिया। वो पल बिजली की तरह उनके बीच ठहर गया, जहां ना कोई शब्द थे, ना गुस्सा, बस एक गहरी सांस। उसके हाथ उसके बाहों पर थे और आंखें सीधी उसकी आंखों में, जैसे दो तूफान आमने सामने खड़े हों। श्यामली की होंठ कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस एक पल के लिए उसकी पलकों से बूंद गिरकर विश्वनाथ के गाल पर आ गिरी। वो पल जैसे कुछ कह गया, कुछ जो दोनों में से कोई सुनना नहीं चाहता था। विश्वनाथ ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा, चेहरा मोड़ा, आंखें बंद की और भारी स्वर में बोला, मेरे भीतर क्या चल रहा है मैं खुद नहीं जानता। श्यामली ने हल्के से सिर झुका लिया, आवाज बहुत कोमल थी। कभी कभी समझने से पहले महसूस करना पड़ता है। वो मुड़ी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली गई। उसकी चाल डगमगा रही थी, पर उसमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने सब कुछ कह दिया हो बिना बोले। विश्वनाथ बस उसे जाते देखता रहा। पानी की बूंदें अब भी उसके बालों से टपक रही थीं, और कमरे में एक नमी बाकी थी जिसमें नफरत, डर और अनकही चाह सब एक साथ मिलकर धड़क रहे थे। वो अकेला खड़ा रह गया, दीवार पर गिरती उस आखिरी बूंद को देखते हुए जो नीचे जाकर फर्श में खो गई, जैसे उसकी अपनी यकीन की आखिरी बूंद भी वहीं समा गई हो।